पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
मैं तो दे दिए बाल मयाने नू, मैं तो दे दिए बाल मयाने नू। शील संतोष विवेक विचारो भाई दूर करो जुलमाने नू। शील संतोष विवेक विचारो दूर करो जुलमाने नू। ज्ञान दराच ध्यान दी तुरिया कोई जाने पान रसाने नू। मैं तो दे दिए बाल मयाने नू, मैं तो दे दिए बाल मयाने नू। महल कपट सतगुरु ने खोले अमी महार सिखाने नू। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे गगन मंडल रम जाने नू। मैं तो दे दिए बाल मयाने नू, मैं तो दे दिए बाल मयाने नू। मैं तो दे दिए बाल मयाने नू, मैं तो दे दिए बाल मयाने। अब क्या बताया इसमें कि गीता और भागवत पढ़े ना बुद्ध शब्द ठिकाने नू। गीता को पढ़ते हैं और मंत्र जाप करते राधे राधे श्याम ला दे, हरे कृष्ण 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 रामा रामा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ये गीता में है कहीं? वेद पढ़े पर वेद न जाने ये बातें पुराने 18, और पत्थर की पूजा करे ये भूलेगे सृजनहारा। अब क्या बताते हैं परमात्मा, गरीबदास साहिब जी क्या बताते हैं कि आप परमात्मा को ना प्राप्त करके सद्भक्ति ना करके, कोई तो विदेश जाता है दूसरे देश में घनी माया इकट्ठी करूंगा, और कोई कहीं घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, वहां बिजनेस करूंगा। परमात्मा कहते हैं जो असली धन तुम भूल गए और उस परमपिता से आपका संपर्क हो गया तो घर बैठे विदेश बना देगा तेरा, घर बैठे विदेश बना देगा। क्या कहते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तू फिरदा दाने दाने नू। ये सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नू। ये सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नू। अपने आत्मा सतलोक आश्रम बलवारा के अंदर परमात्मा कबीर परमात्मा की विशेष रजा है। ये दास उसका भेजा हुआ एक कुत्ता है, आप सभी को भौंक रहा है, जगा रहा है, आपका धन लूट रहा है, आप गहरी नींद में सोए पड़े हो, और सतलोक आश्रम बलवारा जिला हिसार हरियाणा के अंदर वो हीरे मोती लालों की वर्षा हो रही है, उसको ग्रहण करो। फिर क्या बताया है कि सील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माने नो, और यह दुनिया दा जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने ने, तुम मौत भूल गए, यहां से जाने का समय आपको याद नहीं। और याद है एक फॉर्मलिटी है, आपके पक्की दांत चरी, और जब तक ये याद नहीं आवेगी, जब तक यह पक्की नहीं जचेगी, तब तक हम केवल एक औपचारिकता करते हैं, बुराइयों से डर नहीं सकते। जब तक हमें पक्का विश्वास ना होगा कि हम सचमुच मृत्यु होगी। अब वो कैसे होता है विश्वास? एक समय एक व्यक्ति एक संत के पास जाता था और उसका शिष्य भी बन गया था, और वो संत पतले दुबले से रहते थे, कोई ज्यादा विशेष जैसे फल रखा है वो कम में खाया करते, और दूध होता था। वो शिष्य जाता था, उसको कहता था कि गुरुजी, जैसे कभी कभी जाता था 10-5 दिन महीने में, कि महाराज जी आप तो बहुत पतले दुबले हो, कुछ खाते पीते नहीं। तो महाराज जी कहने लगा, भाई मेरे को मौत दिखाई दी है बेटा, इसलिए मुझे अच्छा ना लगता। कि महाराज जी कब मृत्यु होगी, कब आपका यहां से जाना होगा? कि अभी तो 40 साल रह रहे हैं, 40 वर्ष रहते हैं, फिर क्यों चिंता करते हो? ले तो सब नहीं तो मरना है। तो उसने कई बार ये बातें कह दी, आप साधु संत होकर ऐसे डरते हो? ये तो सभी ने मरना, इससे भी क्या डर। एक दिन क्या हुआ, वो संत कहने लगा कि भाई दिखाइए तेरा हाथ है। उसने हाथ देख कर बता दिया कि भाई बेटा तू तो 7 दिन का मेहमान है, 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी बेटा, है तो थोड़ा उम्र तेरी तो रहे। कि सचमुच महाराज? कहा भाई कथी ये तो तेरा लेख बताओ है। जब वह उठ लिया, जाड़ी बंद होगी उसकी, घर आ गया नोट धीरे धीरे कर खाट पर लेट गया, चारपाई पर। घर वाले कहने लगे क्या हो गया? बोल रहे नहीं, बताओ तो क्या हो गया? कि मैं तो 7 दिन का मेहमान हूं। वो कहने लगे कैसे, क्या बात हुई? कि महाराज जी ने बताया है। और वो संत के काफी प्रसिद्धि थी कि वो जो कहते सच्ची होती है। तो सारे घरवाले भी रोन पीटन लग गए, और रिश्तेदार मिलने के लिए आने लग गए। 7 दिन में सूख का काटा हो गया, ना कि मैं खाया जा, रोटी खा ले कोई ना खाई जाती, मुश्किल से एक टूक खावा लौट जा, जो मैं 7वें दिन मरूंगा। अब महात्मा फिर पहुंचे 7वें दिन, जब 9वें दिन गणे था, कहा आज तो क्या बात, क्यों सूख लिया कति, खाना पीना पे छूट गया, मर लिया होते। महात्मा जी गए, सब गांव घरवाले भी कहने लगे महाराज बड़ी अच्छी बात होगी, आप भी आगे अंतिम समय आपके दर्शन कर लेगा आपका भगत, ये तो बहुत बुरी बनी, इसके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, अब क्या होगा। गुरु जी आए, लोटा लोटा देखे, अरे बेटा बहुत कमजोर हो गया तू तो है। महाराज जी बोले बेटा बहुत कमजोर हो गया, कि मैं खाता पीता नहीं जी, कुछ भी ना अच्छा लगता, कुछ भी ना लगता, मन तो सब प्राय दिखा, अपना महसूस नहीं हो रहा। तो संत बैठ के उसने कहा बेटा देखो कितना समय और रह रहा, आज कब मरेगा तू? अक देख लो जी, देख लो बेसिक देख लो। देख के महाराज जी बोले रे भाई बेटा मेरे तक कैलकुलेशन में गड़बड़ रहेगी, 7 दिन नहीं, ये तो 70 वर्ष की उम्र है, अभी तो तू 30 वर्ष का बेटा, 40 वर्ष रह रही है। अक्सर से मुझे एक बार फिर देखियो, फिर देखियो एक बार। कहा बेटा सच्ची है तो 70 साल जीवेगा। जब वह उठ गया और बैठ गया, जो महाराज जी बोले बेटा तूने खा पिया क्यों नहीं 7 दिन में? महाराज जी कत्ती जी नहीं करे था, मैंने तो 7वां दिन दिखा था। तो बेटा मुझे वो तो 40 वर्ष मेरे शेष रहते हैं, वो 40वां दिन मैंने ऐसे दिखा जैसे तने यू भी दिखा, जब तने कहा था किसी ने क्यों सबने मरना की डरना ये पेरा पटा कैसे मरते। परमात्मा कहते हैं या दुनिया का जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने नू, और सील संतोष विवेक विचारो और दूर करो जुल्माने नू। ये जो कहर तोल रहे हो, जुल्म कर रहे हो, चोरी मिलावट रिश्वत खोरी, कहते इस पाप ने दूर करो और नेक नीति से जियो, तो इस प्रकार तुम्हारा कल्याण होगा। ये बात बनाने तो नहीं, मैंने कह दिया आपने सुन ली, बड़ी बढ़िया सत्संग सुनाया, बड़ी अच्छी बात बताई महाराज जी ने, और बकवाद वही करो। कहते ये बातें कहने सुन की नहीं, ये कृपाणन की है, ये कोई डूब भाट के गीत नहीं कि वैसे रिक्रिएशन करने आते हो आप। हृदय में जगह बन जाना चाहिए, जख्म हो जाना चाहिए इस बात का कि संसार में आप ज्यादा समय नहीं रहो। जैसे एक समय नानक साहिब जी के पास श्रद्धालु जाया करते थे और साधु संत उदासीन हो जाते हैं संसार से, जब ज्ञान हो जाता है उदास रहते हैं, क्योंकि संसार में अपना सा कुछ भी नजर नहीं आता। जब ज्ञान हो जाएगा एक औपचारिकता शेष रह जाती है, लेकिन साधु संत किसी से विरोध और कोई नफरत नहीं करते, लेकिन ये अपना सा नहीं लगता। जैसे होटल में रहता है ना इंसान, होटल में सारी सुविधाएं होती है, बेड भी, चेयर भी, सोफे भी, और सारी टेलीविजन भी लगा हुआ होता है, तो वो उसको पता है कि मेरा नहीं है, जब तक मैं हूं यहां तब तक इससे हमने केवल इसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहां परमात्मा भी कहते हैं ये काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो जिसने तू अपना मानने बैठा, ये काया तेरी है नहीं माया कहां से हो, और चरण कमल में ध्यान रख इन दोनों में रखो, यह शरीर भी तेरा नहीं, ये संपत्ति और ये कोठी कार तेरी नहीं, इन दोनों ने भूल जा और भगवान के चरणों में विशेष कसक बनाकर जी, और जब तक इस होटल में है अपना ठीक है, इनका उपयोग कर, कार है कोठी है मकान है जो कुछ भी रहे, लेकिन रहे ऐसे जैसे होटल में रहते हैं, और ये होटल है तेरे आज समझ में आ जाऊ चाहे और कुछ दिनों के बाद आ जाएगी। तो तब हम इसको अपना नहीं मान सकते जब होटल नजर आओगे, होटल है ये लेकिन अभी हमारी भांगना उतरे इतना अपना लग गया है, लेकिन होटल में से ले जाकर दिखाइए कोई कुर्सी वहां से, जब वह छीन लेंगे फिर बैठ। तो इसी प्रकार कहते हैं अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, और उदय अस्त का राज मिले तो वे नाम बिगारे। कहते हैं भक्ति बिना क्या होत है, यो भ्रम रहा संसार, और एक रति कंचन एक ग्राम सोना स्वर्ण पाया नहीं वो रावण चलती बार। जाते समय रावण कहते सरो सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जमके पड़े दीरम। इतना सोना था, सोने के महल बना रहा था, चलते समय एक ग्राम भी सोना रावण नहीं ले जा सका। तो इस प्रकार नानक जी के पास भक्त जाते थे और पूछा करते थे कि महाराज आप तो उदास से रहते, कुछ एक जाते जो नए नए जाते हैं, और कहते थे महाराज आप तो उदास से रहते हो, मायूस से रहते हो, साधु संत फकीरों को भी क्या दुख होता है। नानक साहब जी कहते हैं ना जाने काल की कर डारे, किस विद ढल जा पास आवे, और दिन आते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हंसावे। कि ना जाने ये काल के लोक में इस गंदे लोक में कब के बिजली गिर जा, एक सेकंड का भरोसा नहीं, और ऐसे लोक में और हम हंसे डीजे बजावे नाचे गावे भा हाकरे, तो हमने भांग पी रखी है। एक लड़के का विवाह हो रहा था, अगले दिन बरात जानी थी, उससे पहले दिन सब नाच रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, बैंड भी नाच रही, माँ भी बाप भी, और अगले दिन वो जो बरात जाने लगी उस दूल्हे वाली कार टकराएगी दूसरी गाड़ी से, टैंकर से, और उसमें क्योंकि दूल्हे के साथ इम्पोर्टेंट पर्सन बैठा गए उस परिवार के, कोई बहन का बटेऊ था, कोई रिश्तेदार घना निजी था, और वो आठ के आठ मर गए इंक्लूडिंग वो दूल्हा। अरे अगले दिन पेपर मारे नो टक्कर मारे बाल पाड़न और सिर फोड़े बहन बेटी और सारे, अब चाट लिया उस डीजे ने बजा लो अड़े डीजे। तो पुणात्मा इन बातों को अर्जन रचाना पड़ेगा, अपने जब भक्ति करना चाहते हो, यदि स्टूडेंट बनना चाहते हो, भक्त बनना चाहते हो, तो ये बकवाद छोड़नी पड़ेगी, तब यह भक्ति सफल होगी, ना तो बेसिक बात बनाओ। ठीक है, जैसा करोगे वैसा अपने मिल जरूर जाएगा, लेकिन मोक्ष शेष रह जाएगा। तो नानक साहब जी कहा करते, ना जाने काल की कर डारे किस विद रल जा पासावे, और जिन आते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। फिर नानक साहब जी से पूछा, क्या आप कभी खुश नहीं होते? तो कहते हैं कि खुश होता हूं, साध मिले सड़सादी होंदी और विछड़ जा दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जी हाना मुश्किल हाल फकीरी वे। साध मिले, ये मेरी साध संगत जो मेरे सेवक हैं भक्त हैं, जब ये सत्संग सुनने के लिए आते हैं मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, और जब ये यहां से बिछुड़ कर जाते हैं मुझे चिंता लग जाती है। किस चीज की? कि मुश्किल से इनको सिरच डाया है, भगवान के निकट लाया हूं, और मैं एक अकेला इस सच्चे ज्ञान को बताने वाला हूं, और संसार में ना जाने कितने भ्रमित करने वाले ये सिर फिरे संत और महंत बैठे हैं। ये भगवान का बगीचा लगा रहा हूं, जब ये यहां से जाते हैं मुझे चिंता बन जाती है कि ये किसी भ्रमित व्यक्ति से मिलकर कहीं अपने मार्ग से ना विचलित हो जाएं, मुझे यह चिंता लग जाती है। और जब ये यूं के यूं आते हैं और अधिक आते हैं तो उस समय मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मेरी फसल में कीड़ा लगा नहीं है। साध मिले सड़ सादी होंदी वी छड़ दें दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जिहादा या मुश्किल हाल फकीरी वे। फकीरी माने भक्ति, या भक्ति जो है इतनी कठिन बना दी नकलियों ने, सैकड़ों प्रकार की बकवाद, ये कर लो वो कर लो, वहां जड्डी ने पूज लो वहां तुलसी ने पूज लो, कि तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों तक सीमित कर दिए। कहते हैं या फकीरी भक्ति मुश्किल बना दी इन्होंने। तो जब ये सब भक्त वापस आते हैं तो मैं फूला नहीं समाता कि भगवान के बच्चे अभी सुरक्षित हैं, और जब ये जाते हैं तो मुझे दुख होता है क्योंकि यह भक्ति बड़ी कठिन है, इसे एक बार पैर फिसला फिसला फिर तो काल के ही जाल में प्राणी रह जाता है। अब जो प्रश्न चल रहा है कि इस सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर जो भक्त आ जाते हैं, इनका घना सौभाग्य है, चाहे कोई दुखी आया है भावे चाहे कोई सुख में आया है, ये दुख उसके लिए फिर एक वरदान सिद्ध होगा जो दास के इन वचनों को स्वीकार करके और इस पर दृढ़ हो जाएगा। क्योंकि दास का उद्देश्य केवल आपको यहां बुलाना और छू मंत्र करके रोग नाश करना नहीं है कुछ, क्योंकि अब देखम देखा भगत ज्यादा आन लागे, विशेषकर जो दुखी है रोगी है वो सुन लेते हैं, कोई कह देता वहां जाओ जाते ठीक हो जाओगे। यहां आते हैं कई भगत तो कहते हैं हमने तो बस यो ठीक कराना है, नाम नोम ना लेना, बता कोई बात हुई या सिर में दर्द करना हो हमारे भी तुम यहां पर। यहां आने से पहले ये सोचकर आया करो, यदि आपने मोक्ष प्राप्ति करनी है तो आओ, यदि आपने रोगी नाश करना है तो हॉस्पिटल बहुत बड़े हैं वहां जाओ। हमारा मूल उद्देश्य है जो असली सौदा हम करते हैं वो हमारा सौदा मोक्ष प्राप्ति जन्म मरण का रोग नाश करना है, और जो अन्य संसारिक और शारीरिक कष्ट या मानसिक पीड़ा ये तो हम रूंगे में देते हैं आपको, रूंगे में। अगर सौदा करोगे तो रूंगा मिलेगा ना तो मिले नहीं। रूंगा क्या होता था पुराने समय में, पैसा नहीं होता था गांव में, कनक से ही गेहूं चने किसान जो है जाति में दास का जन्म था। तो हमारी दादी जी लेती थी, कभी कोई सब्जी बेचने वाला आ गया, कोई प्याज बेचने वाला आ गया, फेरी लगाने वाले, कोई टिंडे बेच रहा है, कोई आम बेच रहा है, कोई कुछ भी, तो वो क्या जैसे एक बेला एक कटोरा गेहूं का भर लेती और जाके उसे पूछती, भाई ये कैसे दिए इतने टिंडे? वो कहता, ताई गेहूं के दो बार देता हूं, दो बार तो गेहूं एक पलड़े में डाल लिए, गेहूं के बराबर दो बार टिंडे, जो सौदा करना था तो दादी जी के दौड़ी में डाल दिया। फिर मेरी दादी जी कहती थी, भाई रूंगा और दे, वो उठा के एक टिंडा और दे देता, ना भाई और दे, एक और दे देता छोटा सा, दादी जी राजी हो जाती। यानी सौदे से नारा जो एक्स्ट्रा बेनिफिट था उसने रूंगा कहा करते, और रूंगा उसको मिलेगा जो सौदा लेगा, या सोच लियो अड़ान तो पहले। हमारा सौदा है जन्म मरण का रोग नाश करेंगे, सतलोक ले जाएंगे, सत भक्ति प्राप्त करनी है तो यहां आया करो, ज्ञान सुना करो। हम भक्त जो अपना अनुभव बताते हैं उससे पहले कम से कम पौना घंटा यही बताता हूं, भक्ति करो, भक्ति बिना बात बने नहीं। और फिर तुम इस भाव से आइयो हमने मोक्ष प्राप्ति करनी है। और पुण्यात्माओं देखो, यहां तो दोनों हाथों में लड्डू, एक मंत्र लेकर प्रथम मंत्र उच्चारण करके वहां बैठ कर उच्चारण कर फिर भी मृत्यु होगी ना, आपको मनुष्य जन्म गारंटीड है, ये भगवान का कहा वचन समझ लेना। तो इसलिए हम भी इस बात को अवॉइड नहीं करते, क्योंकि जैसे तैसे कोई आकर नाम ले गया, जब दृढ़ हो गया तो गारंटीड ठीक होगा कि कैसी बीमारी हो, और फिर भी जब डगमग हो गया तो हमने तो अपनी आत्मा पकड़नी है। भगवान ने एक बार नाम ले लिया और 10-5 मंत्र कर लिए या एक भी मंत्र उच्चारण करके किसी कारण से और उसकी मृत्यु भी होगी तो भगवान का हो गया, उसको तुरंत मनुष्य जीवन देगा और अब विश्व में ये ज्ञान फैले ही फैलेगा, वो आत्मा चढ़गी लाइन पे, अगले जन्म में उसका मोक्ष कर देगा। भगवान परमात्मा ने तो अपने लाल इकट्ठे करने हैं, और यहां अगर भक्ति नहीं करेगा कहीं और जागा, वो मरे तो मरेगा, मनुष्य जीवन उसे ना लाख जन्म भी ना मिलना करता है, जो भक्ति करे नहीं रखी। तो यहां दोनों हाथों में लाडू भगवान, जब सच्चे दिल से भक्ति करोगे तो स्वस्थ भी होगे और मोक्ष भी मिलेगा। और वैसे भी अगर नाम लेकर किसी कारण से, क्योंकि नाम लेगे 10-5 दिन, महीने 2 महीने भक्ति कर ली और फिर आस्था हटगी, किसी ने बका दिया, क्योंकि यहां आने के बाद घने मिलेंगे, आपने ये जादू जंतर करनी है, चलो वहां झाड़ा लगाता ठीक हो जाता। यहां आते हैं भक्त बताते हैं, लाते हैं जी इसको ऐसी बीमारी थी या कैंसर थी इसके और ठीक हो गया था, अब दूसरी बार आया तो वो कति स्वस्थ का मतलब 90% आराम था। और फिर कोई रिश्तेदार आ गया कि वहां जाते ठीक हो जाता, उसको लेकर झाड़ा लगा दिया, वैसी स्थिति फिर होगी तीसरी बार आया जब, अब बता के रोऊं उसने, के कहूं मैं, क्या कहूं, बतेरा समझाते हैं, खुरकाते हैं, या मत आना फिर आगे से, अगर ऐसी बकवास करते हो तो भगवान से छोड़कर इतना सारा मिल गया तुम फिर भी चले जाते हो, तुम्हारी अकल कहां, फिर क्या ज्ञान समझा, तो न्यू मार खा जाते हो तुम। अच्छा दूसरी बात यह है, अब आप देखते हो कई भक्त, आप सैकड़ों हजारों की संख्या में भक्त बताते हैं हम ऐसे ठीक हो गए, ऐसे ठीक हो गए, वो क्यों ठीक हो गए, और जो ये कह रहा है मैं 5 बार आ लिया, 1 महीना हो गया, 1 साल आ गया, मुझे लाभ नहीं हुआ, उनको क्यों ना हो रहा, क्या भगवान बदल जाता है उस समय, ये आपकी कमी है। सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, हंसा मौज न पावता तेरी चूक चाकरी मां। इस सच्चे दरबार में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, भगवान कबीर साहब की डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं है, इसके सच्चे दरबार में किसी वस्तु की कमी नहीं है। लेकिन आपको रजा नहीं प्राप्त हो रही तो आपकी कोई सेवा में, कोई क्रियाओं में, कोई आपकी मर्यादा में त्रुटि है, उसको ठीक करो। दूसरा ये होता है कि जैसे एक डॉक्टर के पास एक जैसी रोगी जाते हैं, एक रोगी तो 2-3 खुराकों में ठीक हो जाता है, दवाई देते हैं, और एक को कहता है कल फिर आना 1 हफ्ते में, दवाई ले जा फिर आना 1 हफ्ते में, तो उसका रोग दीर्घ है, उसका रोग अभी स्टार्ट था, वो 2-3 खुराकों से ठीक हो गया, और ठीक वो भी होगा क्योंकि औषधि वही है, उसका थोड़ा समय लग जाएगा, स्वस्थ अवश्य होगा। तो ये भी कारण है, इस कारण से भी आप लगे रहना, परमात्मा के फार्मूले हैं, द्वार धनी के पड़ा रहे और धके धनी के खावे, असो काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ने जा। तो इन फार्मूलों को अपनाना पड़ेगा अपने। फिर क्या बताते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, मालीसी चे सो घड़ा, भाई ऋतु आए फल हो। एक ये फार्मूला है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सैकड़ों घड़े पानी के और समय आए फल हो। जैसे एक आम का पौधा बीज बोया माली ने और उसमें जब तक वो पेड़ नहीं बनता उसकी सुरक्षा भी करता है, उसकी सिंचाई भी करता है, सैकड़ों घड़े पानी डालता है, तो वो उस प्रोसेस का मास्टर है। उसको अविश्वास नहीं होता, उसको पक्का दृढ़ विश्वास है कि इससे यू आम पेड़ बनेगा और जब ये पेड़ बन गया तो इतने फल देगा, लदपद हो जाएगा। इसी प्रकार आपका यो भक्ति रूपी, सत भक्ति रूपी, यथार्थ भक्ति रूपी पौधा आम का बीज ईब बुया है आप जब से यहां आयो। अब इसकी सुरक्षा और आप इसकी संभाल करो, सिंचाई करो, सेवन करो, मर्यादा में रहो, बाढ़ बनाओ, इसकी रक्षा करो और भक्ति करते ही रहो। एक बार इसने थोड़ा सा समय दो, उबरन दो आपकी भक्ति और बनन दो इसको भक्ति का पेड़, फिर देखना फल लदपद हो जाओगे, आप भी खा लोगे, रिश्तेदारों को भी पहुंचा दोगे, तो भी ना खत्म हो, इतना सुख देगा। फिर तीसरा फार्मूला ये है, जैसे आपको बहुत बार बताया है कि भगत भी आपस में बताते हैं, एक बहन आया करती थी, सन 2005 से उसने नाम ले रखा था, संतान नहीं थी और लगभग 15 वर्ष शादी में भी हो गए थे, लेकिन उसको ज्ञान गुण से कत्ती समझ में आ गया था इस बात का कि अगर होगा तो कदे सुनाई यही होगी, ना हो नहीं संसार में। तो उसको बार बार कहा जाता बेटी विश्वास रख, कहते हैं कभू तो दीन दयाल के बहनक पड़ेगी कान, तो अभी दृढ़ रही तो इकट्ठी दो लड़की दी उसको, दो लड़की बालक ने 40 साल की उम्र में। अब 1.5 साल के बाद अब फिर इकट्ठे दो लड़के और हो रहे, उसके वहां कभी इंटरव्यू फिर देगी, आई हुई थी लेकर के, अब दो लड़के फिर दे दिए, मगर बेटी हाथ डुड़वा देगा तेरे संतान की, तन बस करना पड़ेगा। जो इस तरह की डिमांड रखते हैं, आशा लेते हैं, तो उन्हें दर्द भी होना पड़ेगा और ये फार्मूले अपनाने पड़ेंगे, फिर देखियो क्यों करना हो जाए। एक भगत आपको बता रहा था इंटरव्यू में, पता नहीं कहां कहां भक्ति करते थे, दो लड़के थे, एक कैप्टन था एक और अच्छा लड़का था, दोनों की मृत्यु होगी, कई कई लाख रुपये लग गए बीमार होकर के, और 50 वर्ष की उम्र होगी थी, 50 से भी ऊपर उम्र होली थी उस माई की बेटी की, लुटपट कर यहां आई किसी बहन के कहने थे, या 1.5 साल भर के बाद उसको उसने अपना ऑपरेशन ठीक करवाया, साल भर के अंदर लाल दे दिया। तो जब आदमी सारा लुटपट लेगा ना, जब यहां दृढ़ होगा और फिर देखना खेल दाता का। तो आप इस सत्संग में आकर ये ज्ञान सुना करो और जो दास बताओ उस पर दृढ़ होया करो, संसार की मत सुना करो। यहां से नाम लेकर जाने के बाद कोई कह देगा चल वहां लड़के होने की दवाई मिल रहा है, वो हमारा फार्मूला खत्म, वहां कुछ होना ही नहीं था, भगवान ने हाथ हटा लिया। तो इस प्रकार चाहे कुछ भी हो, यहां आने के बाद आप सपने में भी किसी की आस्था मत करना परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त, और फिर देखना एक कैसा दे सब सदे सब साधे सब जाए, माली सिंचे मूल को फिर फले फूले अगाए। तो एक ये फार्मूला है कि राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। मतलब इस श्रद्धा से आप यहां आओ, और फिर दूसरा ये उद्देश्य रखो कि मान लीजिए किसी भी कारण से त्रुटि तो हमारी रहेगी और परमात्मा वो स्वस्थ ना हो सका और मर गया, मृत्यु भी होगी तो मनुष्य जीवन मिलेगा। मनुष्य जीवन का मिलना कोई बालकों का खेल है, ये तो असंख्य जन्म हो गए मृत्यु असंख्य जन्म, और ये तो होगी आज ना तो कल होगी। जैसे आज कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा है 50 साल की उम्र में, अब उसको बड़ा बुरा लग रहा है, क्यों क्या क्या सोच रहा है कि और 10 वर्ष जी जाता, और जो शेष बचे हैं वो कौन से सदा रहेंगे, 10 साल पाछे उनकी टिकट कट लेगी, यहां कोई रह नहीं सकता। कबीर साहब क्या कहते हैं, साथी हमारे चले गए हम भी चलन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही ही ताते लगी है वार। परमात्मा कहते हैं हमें समझा रहे हैं कि तुम देख रहे हो कि कोई कल मर गया, कोई परसों मर गया, इसी से आपके मित्र प्यारे रिश्तेदार खत्म हो रहे हैं और आप भी एक दिन जाओगे। आपका कोई कागज में बाकी रह रही है यानी कोई समय सांस से जिस दिन वो पूरे होंगे एक सेकंड में जाओगे, ऐसे कोई रोक नहीं सकेगा। तो कहने का भाव ये है कि इस संसार की आस में केवल यहां जीना ही जीना मानकर भक्ति नहीं बनेगी। परमात्मा की भक्ति को प्रथम रखकर और फिर चलो आप विश्वास करो ये मालिक आपको जीवन देगा, आपकी आयु बढ़ावेगा, एक्सटेंशन देगा यदि आपकी नीत भक्ति की रही। दूसरी बात यह होती है जैसे परमात्मा को तो हमारे आने वाले समय का खूब पता है, जैसे कोई भक्त की मृत्यु होगी सतनाम प्राप्त करके सारनाम प्राप्त नहीं हुआ, अब कोई उसके मन में क्योंकि जो भक्त है उनको तो दृढ़ता रहती है, समाज के लोग वहां आते हैं पता नहीं क्या क्या उसको कहते हैं, तुम तो ये कहा करते अच्छा भगत था, पूरी श्रद्धा थी, इसकी एक्सटेंशन क्यों ना करी तुम्हारे भगवान ने। तो पुण्यात्मा विचलित ना होना। आपको उदाहरण देता हूं कि उस भगत के कुछ आगे चल के ऐसे कुसंस्कार होते हैं कि सार नाम प्राप्त करके भी उसमें कोई दिक्कत आ जानी थी और उसमें फिर ये नहीं सफल हो सका था, तो इसलिए उसका उसी समय परमात्मा ने अपनी कृपा से ही उसका अंत करके दोबारा जीवन देते हैं और फिर नए सिरे से उसको पार करते हैं। अब तो ये भक्ति युग शुरू हो गया, हजारों वर्ष ये चलेगा, अब तो कोई धोखा ही नहीं, मोक्ष न मृत्यु होगी तुरंत, मनुष्य जीवन 10 महीने आ लेगा यहाँ पर। दसवें महीने वो आत्मा यहाँ आ लेगी किसी बहन बेटी के गोदी में, माई के गोदी में, और गर्भ से भक्ति शुरू हो जाएगी उसकी। दास के पास उदाहरण है ऐसे ऐसे भक्त, क्योंकि दास ने 20 वर्ष हो गए लगभग इस उपदेश देने के आदेश प्राप्त हुआ, उस समय से देख रहा है कि कुछ ऐसे भगत सारनाम प्राप्त करके भी बिगड़ गए और छोड़ गए यहां से और नकलियां गज्जा फंसे, तो वो कुमार्ग था। तो इससे पहले अगर वो पहले मर जाते वो अच्छा था इस नाशकरण भक्ति का। तो परमात्मा अपने भगत हंस के लिए जो ऑपरेशन आवश्यक होगा वो अवश्य करेगा। जैसे किसी को रोग है और उसकी टांग कटनी है और टांग ना कटी तो उसकी जीवन नाश होना है, तो डॉक्टर सलाह देगा कि टांग काटनी पड़ेगी तो जीवन रक्षा चाहता है, तो बुद्धिमान होगा तो इन्हों कहेगा जी जीवन रक्षा कर दो, टांग भी से कट जाए। तो इसी प्रकार परमात्मा के ऑपरेशन में आपको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, जो परमात्मा करता सही करता है, ये विश्वास रखे कि मालिक गलत नहीं कर सकता जब इसकी शरण में आ गए। जैसे एक डॉक्टर के पास आप पहुंच के तो वहां डॉक्टर की चलनी चाहिए मरीज की नहीं, जब मरीज चलाओगा तो ऑपरेशन फेल हो जाएगा और वो जीवन अपना हाथ धो बैठेगा। तो इसी प्रकार जैसे आप देखते हो बिल्ली जो होती है एक घर में बच्चे पैदा करती है और तीसरे दिन उनको मुख से उठा उठा सारी रात दूसरे घर में ले जाती है। क्यों ले जाती है? कि उसको पता है कि कहीं यहां कुत्ते कत्तों को पता ना लग जाए, तेरे बच्चों का यहां पता लगा इतना दूसरे में रखाऊंगी। और जब वो उठाकर चलती है उन बच्चों को अपने मुख से पकड़ती है, कितने पैने दांतरे होते हैं, दांत होते हैं बिल्ली के, और वो बच्चों को बीच से पकड़कर चलती है, वो बच्चे चू भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उनको दर्द होता है, उनको मालूम है हमारी मां पकड़ रही है और इसी से दर्द हो रहा है हमारे को, ये कोई विशेष खास बात है, हमें कोई खतरा है उससे बचाने के लिए निकले जा रही है। तो वो पशु भी इतना महसूस करते हैं, वो भी हाय हाय ना करते और चुपचाप बेचारे नूफ हो जाते हैं, नूफ उकड़ जाते हैं और वो पकड़ के ले जाती है और बिल्कुल नहीं बोलते, उनको मालूम है जब शोर कर दिया तो कुछ पहचान ले कुत्ता आ जाएगा हमें खा जाएगा, तो चुपचाप उस दर्द को सहन करके सुरक्षित हो जाते हैं। तो इसी प्रकार समझ लेना परमात्मा थोड़ी बहुत यहां आकर भी आपको कोई पीड़ा है तो आपके हित में है, आप उसमें बिरड़ाना नहीं। कई तनों को हमें 4 बार आ लिया जी, अरे 4 बार में कला टूट गया, सारी उम्र आना तेने तो यहां पर अगर चार अपन में थक लिया तो इसी तरह को लाभ होगा, फिर फायदा क्या होगा इसका। तो पुण्यात्मा उनको याद रखना है। कहते राज्य क्रमता राम की रजा धरे सोशीस दास गरीब दर्श पर दिन बैठे जगदीश। इस परमात्मा की रजा में रहना और देखना फिर ठाठ आपके 101 पीढ़ी का कल्याण होगा, या कोई डूम भाट के गीत नहीं। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे, ध्यान पूर्वक सुनना।
नमस्कार सर।
सत साहेब, क्या शुभ नाम है जी आप जी का?
भानुदास पाटिल।
सर कहाँ से आए आप?
जिला नासिक पीपल गांव तहसील निफाड़ से।
सर क्या काम करते हैं आप?
मैं एक मेरी खुद की बेकरी है, उसके पहले मैं एक वीडियोग्राफी का काम किया करता था।
सर परमसंत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे?
परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले हम थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि 95 से हम हनुमान जी की भक्ति किया करते थे। उसके बाद में हम शिव जी की साधना में लगे रहे। उसके बाद में हमारे गांव से ही 50-50 किलोमीटर पे ऐसे ऐसे तीर्थ है, जैसे नासिक में राम जी, त्र्यंबकेश्वर में शिव जी और वनी में सप्तशृंगी दुर्गा माता। इसीलिए हमें पहले से ही ये सब देवता अच्छे लगते थे। इसके कारण पूर्णिमा को दुर्गा माता के वहाँ, सोमवार को त्र्यंबकेश्वर और हर गुरुवार को नासिक में पंचवटी में जाया करते थे। लेकिन बहुत घूमने के बाद में भी हमें ऐसा लगा कि कुछ कमी है। इस बीच हमारी मुलाकात अमरेश नेरकर जी से हुई। उन्होंने हठ योग से योग सिखाया, लेकिन कुछ साल तक हम 2-3 साल ऐसे ही भटकते रहे। उनको मैंने कहा कि ऐसा कीजिए कि आप ही हमारे गुरु बन जाइए। उन्होंने सीधा कहा कि देखो भैया, मैं तो गुरु बनने के लायक हूँ नहीं, लेकिन आप बहुत जिद कर रहे हो तो गायत्री का उपासना आपको बताता हूँ, इसकी साधना कीजिए। तो कम से कम 2 साल तक हमने गायत्री की उपासना की। इस बीच हमारा वैराग्य ऐसा बढ़ गया कि हम सोचने लगे कि संन्यास से ही हमें कुछ ना प्राप्ति होगी परमात्मा की। तो उनसे हमने रजा ली और हरिद्वार की ओर चल पड़े। हरिद्वार को जैसे हम गंगा घाट पे पहुंचे और बैठे हुए तो एक दाढ़ी वाले ऐसे संत आ गया किसी, अरे बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है? ऐसा कर, तू घर पे जा, तेरा राम तो घर पे मिलेगा, परमात्मा खुद तुझे ढूंढते हुए आएगा, तू यहाँ पे मत आ, तेरा काम है नहीं। क्योंकि मुझे भीख मांगने की बहुत लज्जा आती थी और साधु को पहले भीख मांगना पड़ता था, मांग मांग के खाना पड़ता था। मैं सदा जो साधु परमात्मा के नाम पे घूमते हैं उनको भीख क्यों मांगनी पड़ती है। इस बीच मैं वापस घर पे चला आया, पिताजी डांटे, सब डांटे।
से परमसंत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण आप कैसे आए?
आस्था चैनल पे हमारे मित्र अमरेश नेरकर ने जब देखा कि परमसंत सतगुरु रामपाल जी महाराज अहमदाबाद में आए हुए हैं, उन्होंने वहां जाके उनसे नाम दीक्षा ले ली। उस बीच हमें बीड़ी और सिगरेट की इतनी लत लग चुकी थी कि 3 डिब्बिया सिगरेट की हम खत्म कर चुके थे। दिन भर में इतना करने के बाद में भी हमें चैन नहीं आता था। उन्होंने कहा भैया सत्संग देखो आप, पहले सुनो, क्योंकि मैंने तो गुरु कर लिया है, आप इस चक्कर में मत पड़ो कि देवी देवता की पूजा करते करते कहीं आपका जीवन नष्ट ना हो जाए। तो मैंने उसी दिन उनके कहने पर सत्संग आस्था चैनल पे सुना। जब गुरुदेव जी ने सृष्टि रचना के बारे में बताया और तपस्या का जैसे ही वर्णन आया तो मेरे रोंगटे बहुत खड़े हो गए। मैं घबरा गया कि अरे बाप रे, मैंने ये क्या किया, तंबाकू का सेवन करने से क्या होता है, आदमी जब यहाँ का शरीर छोड़ के चल पड़ता है तो तपस्या पे काल कैसे खाता है। जब मुझे उसकी डेफिनेशन मालूम पड़ी, उसके पहले तो हम गीता का बहुत श्लोक पढ़े थे, गीता का पाठ भी किया था और ऐसे मानते थे कि तीनों गुणों की भक्ति करने से मूड राक्षस प्रवृत्ति की होते है, उनको मानसिक शांति भी नहीं मिलती और सुख भी नहीं मिलता। हम सोचते थे कि हम तो सही भक्ति कर रहे हैं, हमें हमारे बारे में तो है नहीं। लेकिन सदगुरु देव के मुख से ये सुनने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि तीनों देवों में चक्कर में तो मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। मैंने प्रार्थना लगाई कि गुरुदेव मैं तो आपको आपके पास नहीं आ पाऊंगा, आप ऐसी कृपा कर दीजिए कि हमें आपकी शरण में ले ले। सदगुरुदेव की इतनी कृपा हुई कि अगले ही महीने गुरुदेव नासिक में सत्संग करने वाले हैं। ये बात सुनकर तो हमारे मन में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जैसे ही सदगुरुदेव नासिक में आए, हमारी धर्मपत्नी को बोला, देखो भगतमती, मैं तो शरण में जा रहा हूँ, क्या आप आना चाहते हो? उन्होंने जल्दी से मेरे हाँ में हाँ भर दी और सन 2004 में मैं सदगुरुदेव के चरणों में आ गया। जैसे ही डोंगरे वस्ती गृह पे आया तो पांडाल का काम ही चालू था। संत रामपाल जी महाराज कुर्सी पे बैठे हुए थे, जैसे ही देखा मैंने दंडवत प्रणाम किया, मालिक ने तुरंत चरणों में ले लिया, बेटा आओ, हम तो आपके लिए आए थे। ऐसा सुनते ही हमारे कलेजे में ऐसा धसका बैठा कि है परमात्मा, आप तो खुद चलकर आए, हम तो भटके हुए थे। इस प्रकार भगत जी संत रामपाल जी महाराज ने 2004 में प्रथम नाम दिया और जैसे ही 4 महीने बीते वापस गुरु जी वापस नासिक में आए। सतनाम उपदेश भी 4 महीने के बाद में तुरंत मिला। ऐसी रजा बख्शी कि हमारा जीवन ही उद्धार हो गया।
परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो सत भक्ति आपको दी है, उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला?
उस भक्ति का एक लाभ सुनाऊ तो मैं गिनाऊ। वैसे जैसे ही नाम लेते हैं, हमारी बेकरी छूट चुकी थी, घर में कलह हो चुका था। जैसे हम भाड़े के घर में रहते थे, खुद की बेकरी होकर भी, लेकिन जैसे ही नाम उपदेश मिला, उसमें टेक्निकल सपोर्ट इतना मिला कि मेरी पढ़ाई सिर्फ 10वीं कक्षा के होने के बावजूद मैं कैमरा कैसे चलाते हैं, कैमरे का सिनेमाटोग्राफी का कोर्स किया, वो भी फ्री में। उसके बाद में एड फिल्म्स, वीडियो फिल्म्स, मराठी फिल्म तक पहुंच गया। फिर मालिक को पूछा, मालिक बोले फिल्म में काम ना करना है बेटा, तो भी आप कर तो बकवाद फिल्म ना करो। इस प्रकार से मेरी आमदनी तो अच्छी हो गई, लेकिन मालिक को फिर अरदास लगाई कि मालिक ये लाइन मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो बोले बेटा ठीक हो जाएगा। उसके बाद में भाई होके मेरे पास आया, भाई बोले चिंता मत करो, 1-2 घंटे का प्लाट है, आप उसमें कुछ भी कर सकते हो। मालिक से फिर अरदास लगाई क्योंकि पैसे थे नहीं, बैंक वाले के पास गए, बैंक वाले बोले होंगे नहीं। मैंने बोला ठीक है, मालिक ने बोला हो जाएगा बेटा, चिंता मत करो। अगले ही महीने जैसे जाता था कि बैंक वाले खुद बोले आपको हम 3 लाख रुपए तक लोन दे सकते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, हो जाएगा। उसके पहले दिक्कत ये थी कि हमारे एरिया में पानी था नहीं, बोरवेल लगाना था। बोरवेल के लिए हमने गाड़ी मंगाई, सदगुरुदेव का नाम लिया। जैसे बोरवेल की गाड़ी चालू हुई, 90 फीट तक चले गया, पानी नहीं लगा। भगतमती के तरफ मैं देखने लगा, उसके तरफ मैं और वो मेरे तरफ। 99 फीट तक भगत जी चला गया, लेकिन कुछ नहीं, धुआ ही धुआ। ऑटोमेटिकली हमारी दोनों की आंखें बंद हो गई, हाथ जुड़ गए, परमात्मा के शरण में अरदास लगाई, देखो मालिक आप जान ही जान हो गए, गरीब आदमी आप ही देखो। उतने में उस धुएं में से ऐसी प्रतिकृति अंकित हुई जैसे कबीर साहब पहले आए, बाद में सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज की चेहरा समझ में आया। वो बोले बेटा क्या हुआ? मैंने बोला मालिक यहाँ तो सब धुआं धुआं है। अरे नहीं, सामने तो देखो पानी की फुहारें निकल रही है। तो जैसे ही आंखें खुली, 100 फुट पे पानी इतना उछल रहा था। बोर वाला बोले भैया 140 के आगे तो हम नहीं कर पाएंगे, बल्कि हमारे पूरे एरिया में 250-300 फीट के आगे ही बोर कर किया है। ये सबसे बड़ा लाभ हमें सदगुरु देव ने सत्मलोक से पानी खुद लाके दिया, जिससे हमारा आगे का काम पूरा सफल हुआ। उसके पहले हमारी छोटी बेटी जो गिरने के कारण उसके हाथों में फ्रैक्चर हो गया था, हम दवा दारू करने के लायक भी नहीं थे, किसी से पैसे मांगे नहीं दिए, हमने मालिक के आगे हाथ जोड़ा, मालिक घी लाने के लिए पैसा नहीं है, जोत कैसे जलाऊ, बच्ची को दवा कैसे कराऊ, डॉक्टर के पास कैसे लेके जाऊ। उतने में हम जा रहे थे, उस मालिक की गाय जो बहुत अच्छी नहीं थी, जैसे छोटे बच्चों को देख के दौड़ पड़ती थी मारने के लिए, हमारी बच्ची घूम रही थी हाथ गले में पकड़ के। जैसे वो गाय ने देखा और मैंने उन दोनों के तरफ देखते ही मेरे आंखें बंद हो गई, मालिक मेरी बच्ची तो आज गई, आपकी बच्ची है, आप जो करना है करो। उतने में गाय उसके पास आके रुक गई, उसका हाथ उसके सर पे टकराया, बच्ची नीचे गिरी। वैसे ही गाय रुक के वापस चले गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा बच्ची तो आज जिंदा नहीं बचेगी, लेकिन मालिक की ऐसी रजा हुई बच्ची उठ के दौड़ के मेरे पास आई, पापा पापा करते मैंने देखा तो उसने हाथ ऐसे ही हिलाया और देखा वो गाय गाय जैसे मराठी में हम्बा बोलते हैं तो करके बताया तो हाथ उठाने लगे। मैंने बोला बच्चा क्या हुआ, तो मैंने उसका हाथ देखा दर्द होता है, बोले ना। तो मालिक की ऐसी अरदाज हुई, गाय का कारण हुआ, बिच्छी गिरी, दवाखाने में जाने की जरूरत नहीं पड़ी और बच्ची अपने आप मालिक की दया से बिल्कुल ठीक हो गई।
सर भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
भक्त समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि मैं नासिक में रह के बचपन से ही हर तीर्थ पे गया हूँ। त्र्यंबकेश्वर, माँ दुर्गा, शेरावाली, इनकी पूजा करते करते थक गया था। मुझे पता नहीं था कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। हाँ, कबीर वाणी, कबीर दोहे सुनते सुनते इतना तो पता चल गया था कि ये हटके बोलते हैं। लेकिन जैसे ही मालूम पड़ा कि करौथा में सदगुरुदेव आए हुए हैं, वहां जाने से ही लाभ होगा, तो हमारे मित्र और हम चल आए और हमारा जीवन का पूरा उद्धार हुआ। वैसे पूरे भक्त समाज को यही मेरी प्रार्थना है, दिल से प्रार्थना है कि आप कहीं मत जाओ 33 कोटि के चक्कर में पड़ो, एक ही मूल को सींचो, अपने आप फल तो मिलेंगे ही, आपका जीवन भी बर्बाद नहीं होगा, आपका कृतार्थ हो जाएगा। सदगुरुदेव बरवाला में आए हुए हैं रामपाल जी महाराज, उनके चरणों में आओ जिला हिसार में और अपने आप को कृतार्थ करके सही भक्ति मार्ग पर चलो। इतना ही मेरी गुजारिश है।
धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।